ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने किया पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल का उद्घाटन। विमानस्थल के संरचना संचालन से न केवल गंडकी प्रदेश को मदद मिलेगी बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। प्रदेश नंबर एक के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने किया आह्वान। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट में हुई कम से कम 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि विकास, समृद्धि और सुशासन सरकार का पहला एजेंडा है। आज पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सरकार ने सामाजिक न्याय के साथ सुशासन और समृद्धि के मूल मंत्र के साथ काम करने का निर्णय किया है। जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। बताते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि इस कार्यकाल में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वे काम करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड ने यह भी कहा है कि गौतम बुद्ध और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में लाए जाने से न केवल गंडकी प्रदेश को मदद मिलेगी बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने कहा कि देश को राजनीतिक स्थिरता देना जरूरी है। प्रदेश नंबर एक के प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का आह्वान किया है। प्रदेश सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद प्रदेश प्रमुख खापुंग ने संविधान की धारा 168 की उपधारा 2 के अनुसार नए मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2 रविवार को शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री पद के लिए दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है। लुम्बिनी प्रदेश सभा के सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। प्रदेश की राजधानी भालुवांग में आज आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचंद ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रतिनिधि सभा और अन्य प्रदेशों में प्रदेश प्रमुख के लिए ज्येष्ठ सदस्य को शपथ दिलाने और ज्येष्ठ सदस्य को प्रदेश सभा सदस्य को शपथ दिलाने की प्रथा है, लेकिन लुम्बिनी प्रदेश में प्रदेश प्रमुख ही शपथ दिलाते हैं। इसी बीच प्रदेश सभा की बैठक कल सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। लुम्बिनी प्रदेश के ज्येष्ठ सदस्य दिल्ली राज भूसाल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव दुर्लभ कुमार पून ने दी। बागमती प्रदेश सभा का अधिवेशन कल यानी पूस 18 गते दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। प्रदेश सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव कृष्ण हरि खड़का ने कहा है कि प्रदेश सभा सचिवालय में कल सुबह 8 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और दोपहर में प्रदेश सभा की बैठक में पेश करने के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल के नेता के रूप में लीला गिरी को चुना गया है और चेत नारायण आचार्य को उपनेता के रूप में चुना गया है। देवखुरी में बुलाए गए एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल की बैठक में गिरी को पार्टी का नेता और आचार्य को उपनेता चुना गया। सुदूर पश्चिम प्रदेश में नेकपा माओवादी केंद्र संसदीय दल का नेता खगराज भट्ट को चुना गया है। माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य रमेश धामी ने कहा कि भट्ट को आज धनगढ़ी में हुई प्रदेश संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश सभा संसदीय दल का नेता चुना गया। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता गंगालाल तुलाधर ने बताया कि काठमांडू में चल रही बैठक में विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश सदस्यों ने मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की सरकार का समर्थन करने की बात पर जोर दिया। नेता तुलाधर के अनुसार स्थायी समिति के सदस्यों की राय थी कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड द्वारा सरकार में भाग लेने का औपचारिक प्रस्ताव भेजे जाने के बाद ही उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिए। नेता तुलाधर ने कहा कि नेकपा एमाले के साथ पार्टी की एकता को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। गौरतलब है कि एकीकृत समाजवादी के 52 स्थायी समिति सदस्यों में से अब तक सिर्फ 32 ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि अच्छे काम करने की मौजूदा सरकार की नीति है। उन्होंने प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में नेकपा माओवादी केंद्र करनाली प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को विश्वास में लेने और सकारात्मक कार्य करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। ये जानकारी प्रधानमंत्री प्रचंड के प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्मा ने दी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सरकार को खेल क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। मदन भंडारी खेल एकेडमी के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सरकार को खेल क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल को कूटनीति का अच्छा माध्यम बताते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि जिन देशों में घनिष्ठ मित्रता नहीं है वहां भी खेल के माध्यम से मित्रता की जा सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर आज धमाका हुआ। इस हमले में 10 लोग मारे गए हैं जबकि 8 लोग घायल भी हुए हैं। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल नफी टकूर ने भी धमाके की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि काबुल मिलिट्री एयरपोर्ट पर यह धमाका सुबह के समय हुआ है। युगांडा में नए साल का जश्न मनाने के दौरान भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रात 12 बजे के करीब कंपाला के फ्रीडम सिटी मॉल में हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लोगों को आतिशबाजी देखने के लिए मॉल के बाहर बुलाया गया था जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। इस हादसे में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने किया पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल का उद्घाटन। विमानस्थल के संचालन से न केवल गंडकी प्रदेश को मदद मिलेगी बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने किया आह्वान। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट में हुई कम से कम 10 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।